सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
हम लोग नौवां अध्याय देख रहे हैं। भगवान पहले श्लोक में कहते हैं, देखो ये नौवां अध्याय जो है बिना प्रश्न के ही शुरू हो रहा है। क्यों शुरू हो रहा है ये हमने देखा है कि आठवें अध्याय में भगवान ने क्रम मुक्ति की बातें कही, मगर भगवान ये नहीं चाहते हैं कि अर्जुन जो है क्रम मुक्ति वाले मार्ग में चला जाए। भगवान चाहते हैं कि वो सद्यो मुक्ति का जो मार्ग है, जो अब इस अध्याय में नौवें अध्याय में बोलने जा रहे हैं, उस मार्ग पर अर्जुन चले, ये उनकी इच्छा है। इसलिए वो कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रत्यक्षं अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोचसे अशुभात्। इदम, ये कौन सा ज्ञान है? तो ये ज्ञान भगवान आगे भी बोल चुके हैं, कई बार इस ज्ञान के बारे में आगे चर्चा हो चुकी है और अब इस अध्याय में फिर करेंगे, और इसके बाद में भी जो अध्याय आएंगे उसमें भी चर्चा होगी ज्ञान की। तो ज्ञान क्या है? मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, ये ज्ञान है। दूसरा भगवान ने आगे भी कहा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ है, ये सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव छोड़ के कुछ भी नहीं है। ये मॉनिटर भी वासुदेव है, ये टेबल भी वासुदेव है, जितने भी पशु पक्षी हैं सब वासुदेव है, वासुदेव छोड़ के कुछ भी नहीं है। ऐसी जिसकी दृष्टि है वो महात्मा है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो भगवान ने ऐसा ज्ञान की चर्चा आगे की है। फिर भगवान कहते हैं ज्ञान गुह्यतमम है। क्यों ये गुह्यतमम ज्ञान है? ये गुह्यतमम इसलिए है कि बिना सहायता के आपको ये ज्ञान नहीं मिल सकता, इसलिए ये गुह्यतमम है, अपने आप नहीं मिलेगा। आपके पास वो तत्व है, सबके पास है, मगर आपको ज्ञान नहीं है। और ये ऐसा है कि जब तक कोई नहीं बताए तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा। विज्ञान सहितम भगवान कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति होगी इससे। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकल केवल मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद अनुभव करके देख लो आपके पास आत्मा है कि नहीं। आत्मा के बारे में बता दिया है, उसके अंदर में उनके उस तत्व के क्या क्या गुण हैं, क्या विशेषता है। वहाँ जब पहुँचेंगे आप मिला के देख लो वो चीज़ है कि नहीं वहाँ पर। तो इससे क्या होगा? बोले सद्यो मुक्ति मिलेगी, मगर कर्म और उपासना करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखा था उपासना नंबर एक, उपासना नंबर दो, उपासना नंबर तीन आठवें अध्याय में, उससे क्या होगा? उससे क्रम मुक्ति मिलेगी। क्रम मुक्ति मिलेगी मतलब आप हायर लोक में ब्रह्म लोक पहुंच जाएंगे, और ब्रह्म लोक में जाके आपको वहां ज्ञान मिल जाएगा। तो मुक्ति कब होगी? ब्रह्म लोक के पहुंचने के बाद होगी, मगर इस ज्ञान से यही हो जाएगी, सद्यो मुक्ति मिल जाएगी। तो मुक्ति का मतलब क्या हुआ? यत ज्ञात्वा मोचसे अशुभात। अशुभात, अशुभ ये संसार बंधन जो है, ये संसार बंधन जो जन्म और मरण वाला जो संसार है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। फिर हमको जो है वापस जन्म नहीं लेना है, हम मुक्त हो जाएंगे, हम लीन हो जाएंगे ब्रह्मन में। अच्छा, यह ज्ञान साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यह ज्ञान साक्षात मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान है। कहाँ लिखा है भाई? ये श्रुति में कहाँ है? ऐसा वेद हमारा कहते हैं, और इसके अलावा मोक्ष का दूसरा साधन नहीं है। ये भी भगवान कहते हैं, शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी लिखते हैं, यह यथार्थ ज्ञान साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जो कि वासुदेव सर्वमिति आत्मवेदम सर्वम एकमवा अद्वितीयम ये सब श्रुति के अंदर आता है, ये सब वेद के अंदर आता है, श्रुति स्मृतियों में ऐसा दिखलाया गया है। इसके अतिरिक्त और कोई मोक्ष का साधन नहीं है। आप अच्छी तरह समझ लो इसको, आपको सद्योमुक्ति ज्ञान के बिना और कोई साधन नहीं है। आपने क्रम मुक्ति में भी देखा, आप कर्म उपासना करके कहाँ गए, ब्रह्मलोक गए, वहां जाके भी आपको ब्रह्मलोक के अंदर ज्ञान देंगे ना ब्रह्मा जी, तभी तो मुक्ति होगी, इसलिए तो उसको क्रम मुक्ति कहा। तो वो ज्ञान अगर आप यहां ले लो तो आपको क्यों ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा, वहां बैठे रहना होगा, उनकी घड़ी दूसरी है, उनकी घड़ी बहुत दूसरी है। तो ज्ञान से क्या होता है, ज्ञानात एव कैवल्यम, ज्ञान से ही आपको पद मिल जाएगा। श्रवण मात्र न ज्ञानम भवति, श्रवण मात्र न, अगर आप उत्तम अधिकारी हैं श्रवण से ही हो जाएगा, श्रवण से हो जाता है। हम लोग भागवत में भी देख रहे थे कि आपको गर्भ के अंदर भी ये ज्ञान हो सकता है, गर्भ में रहते रहते ज्ञान हो सकता है। और मगर ये कैसे जाने, गुरु मुखातेव श्रोतव्य है, आपको गुरु से उसको सीखना पड़ेगा, वहां से जानना पड़ेगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवावगमम त्रम्यम सुसुकम कर्तव्यम अव्ययम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या, इसको राज विद्या कहते हैं। क्यों राज विद्या है, ये विद्याओं में जितनी भी विद्याएं हैं उसमें ये राजा है, ये सब विद्याओं में राजा है। क्यों राजा है, क्योंकि ये सरल है और बाद में याद नहीं करना पड़ता है कुछ। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाएगा फिर आत्मा आत्मा थोड़ी ना करते रहेंगे हम, हो गया ज्ञान हो गया, फिर जो है आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, उसका ज्ञान बराबर होता रहेगा। हमने केनु परिषद ने देखा ना, प्रतिबोध विदितम, हर थॉट के अंदर उसको उसका ज्ञान होता है, हर वृत्ति के अंदर उसका ज्ञान होता है। हम वृत्ति में अटके रहते हैं, वृत्ति को जो प्रकाशक है, जो प्रकाशित करता है, उसकी तरफ जाते ही नहीं हम। बहुत सीधा चीज है, इस कमरे के अंदर जो है हम सब चीजें देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, माइक देख रहे हैं, पुस्तक देख रहे हैं, मगर किस में देख रहे हैं, इस प्रकाश में देख रहे हैं, वो प्रकाश को हम नहीं देख पाते, प्रकाश हमारी नजर में नहीं पड़ता है। हमारी नजर में क्या पड़ता है, वो सब नाम रूप नजर आते हैं, प्रकाश नहीं नजर आता है। उसी तरह वृत्तियां भी जो है सब नजर आती हैं, मगर वृत्ति का प्रकाशक जो है नजर में नहीं आता। और ये भी कहते हैं कि इसको जानने के बाद में और कुछ जानने का रहता ही नहीं है। इसको अगर जान लिया, सब कुछ जान लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञानी है उसको क्या फिजिक्स केमिस्ट्री सब आ गया क्या, ऐसा हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको जानने से सब जान लिया मतलब कि ब्रह्मन को जान लिया तो ब्रह्मन जो है सारी चीजों का कारण है, बाकी सब क्या कार्य हैं, इफेक्ट हैं। ब्रह्मन को जान लिया तो इफेक्ट को भी जान लिया। सोने को अगर जान लिया तो सोने के आभूषण को जानने में कितनी तकलीफ हो सकती है आपको, और चाहे आभूषण का जो भी नाम रूप हो, सब सोने का ही है। आपने एक उसका रूप देखा, उसको कह दिया ये बैंगल है, ये चूड़ी है, गले में पहनने वाले को हार कह दिया, कान में पहनने वाले को कुछ और कहा, नाक में पहनने वाले को कुछ और कहा, पैर में पहनने वाले को कुछ और कहा, है तो सब सोना ही ना, है तो सोना ही है। मगर हम कहाँ फंसे रहते हैं, हम नाम रूप में फंसे रहते हैं। हम देख के बोलेंगे अरे ये तो पहनने वाला है, ये तो अंगूठी है, इसको तो उंगली में पहनेंगे, उसको हम कान में नहीं पहनेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर उस ब्रह्मन को जान लिया, उस कारण को जान लिया, तो सब कार्य को जान लिया। जैसे हम सोने को जान लिए तो हम सारे सोने के आभूषण को जान लेते हैं। उसके बाद में इस ज्ञान को प्राप्ति से क्या होता है, कृतकृत्या मिल जाती है, फुलफिलमेंट हो जाता है, हम फुलफिल हो गए। फिर जो है ना हमको चिंता नहीं रहती है संसार की चीज़ों में, कृतकृत्या तो नहीं होती है कभी, हम कभी फुलफिल नहीं होते हैं। हम एक के बाद एक गोल बनाते हैं, उसके बाद फिर अनफुलफिल्ड है, कृतकृत्यता नहीं होगी। मगर इसमें इसमें फुलफिलमेंट आ जाएगा आपको आत्मज्ञान हो जाने के बाद में। अच्छा, अन्य ज्ञान जो है वस्तुओं के ऊपर निर्धारित है, जितने भी ज्ञान है संसार के ज्ञान वो वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। मैं टेबल देख रहा हूँ, मैं घड़ी देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, ये वस्तु का ज्ञान है। और ये आत्मज्ञान क्या है? जो अल्टीमेट देखने वाला है उसका ज्ञान है ये। तो ये सब्जेक्टिव है। और हमारे जितने भी दूसरे ज्ञान है संसार के ज्ञान वो कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। और ये सब्जेक्ट के बारे में है। और उसके बाद में भी कहा कि अन्य कोई ज्ञान जो है मोह को नहीं हटाता है। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हमारा कोई ज्ञान नहीं हटाएगा। आप नोबल लॉरिएट भी हो जाओ तो अज्ञान आपका बना रहेगा, मोह नहीं हटेगा। मोह मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं समझना। ठीक से नहीं समझने का मतलब क्या है? ये संसार की हर वस्तु जो है नाशवान है, इसमें सुख नहीं है, ऐसा हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं ये संसार की सारी वस्तुएं नित्य हैं और ये वस्तुएं हमें सुख देती हैं। यही हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, यही मोह है। तब आपने कोई दूसरा ज्ञान ले लिया, कोई भी ज्ञान ले लिया, तो ये मोह नहीं जाएगा आपका कभी। केवल इस आत्मज्ञान से ये मोह जाएगा। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग संसार के बारे में आत्मज्ञान से ही जाएगी, दूसरे किसी ज्ञान से नहीं जाती है। कैसे राजगुह्य है यह ज्ञान? परम रहस्य, परम रहस्य ये राजगुह्य। कई बार ऐसा भी होता है कि बता देने के बाद में भी नहीं समझ में आता है। हम लोग 7 सालों से इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, रोज ही हम लोग बोलते हैं तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, होता नहीं है, घटता नहीं है। तो भगवान ने भी ऐसा कहा, श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, कई लोगों को देखो ये आश्चर्य है ज्ञान, वक्ता भी आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है? क्यों? आत्मा के बारे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ इंद्रिय गोचर नहीं है, मन गोचर नहीं, फिर भी उसके ऊपर लेक्चर दे रहा है। आश्चर्य है। अच्छा, बताने के बाद भी सुनने वालों को समझ में नहीं आया, सब समझ में आ रहा है, मैं फिर बोलता नहीं समझ में आया, आश्चर्य। ये परम गुह्य है। और क्या रीजन है परम गुह्य का? क्योंकि मन और इंद्रियों के परे है, इसलिए परम गुह्य है। मन और इंद्रियों से ये पकड़ में नहीं आता आत्मा। आप कभी भी आत्मा को टेस्ट ट्यूब में नहीं ला सकते। कोई भी साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता है, कोई भी वैज्ञानिक विश्वास नहीं करना चाहता है। वो कहता है हमारे लेबोरेटरी में आप आत्मा को ले आओ, तब हम कहेंगे, हम उसको टेस्ट करके देखेंगे, उसमें एसिड डालेंगे, उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल डालेंगे, तब बोलेंगे आत्मा है कि नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा। और जब तक वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं आता है तब तक वैज्ञानिक मानते नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं ये तो मन इंद्रिय गोचर नहीं है, ये तो पकड़ में आएगा नहीं आपके। अच्छा, पवित्रम है, ये बहुत पवित्रम है, इदम उत्तमम, पवित्र है। कैसे पवित्र है? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, 4th अध्याय में हमने देखा था कि ज्ञान से क्या होता है, हमारे सारे कर्मों का नाश हो जाता है। सारे जितने भी हमने अनंत कोटि जन्म के अंदर जो जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों का नाश हो जाता है, वो और फल नहीं देते हैं। क्या यह ज्ञान पाना कठिन है? बोलते हैं सुसुखम कर तुम, सरल है सुसुखम, बहुत सरल है। अच्छा, ज्ञान कहीं भी दिया जा सकता है। भगवान ने ज्ञान जो है युद्ध भूमि में दे दिया, पूरा ज्ञान गीता का युद्ध भूमि में दे दिया। तो ज्ञान कहीं भी दिया जा सकता है, केवल मन तैयार होना चाहिए। अच्छा, अगर एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया क्या फिर भ्रम आ सकता है, फिर मोह हो सकता है? अव्ययम, भगवान कहते नहीं कभी नहीं होगा ये अव्ययम, आप फिर से भ्रमित नहीं होंगे। अब फिर इसके बाद में भगवान आगे 3rd श्लोक में कहते हैं,
अश्रद्धधानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य माम् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि
अश्रद्धधानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम् निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि।
भगवान कहते हैं अगर आप ये ज्ञान प्राप्त ना करेंगे तो क्या होगा, ये भी तो बताना होगा ना, ज्ञान प्राप्त अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। कहते हैं अश्रद्धधाना, अश्रद्धाना जिसमें श्रद्धा नहीं है, इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं है। पुरुषाहा, पुरुषाहा जो व्यक्ति जिनकी श्रद्धा नहीं है। धर्मस्य मतलब इस आत्मज्ञान में, इस आत्मज्ञान में जिन पुरुषों की श्रद्धा नहीं है, परंतप हे अर्जुन अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान को प्राप्त नहीं होते, उनको आत्मज्ञान नहीं हो पाता है। निवर्तन्ते भ्रमण करते रहते हैं, कहाँ भ्रमण करते रहते हैं, मृत्यु संसार वर्तमानी, मृत्यु रूपी संसार चक्र में ये लोग भ्रमण करते रहते हैं। तो जिन्होंने इस जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई है, उनका क्या होगा, ये मृत्यु संसार वर्तमानी, ये जो चक्र है जन्म मृत्यु वाला, उसमें निवर्तन्ते भ्रमण करते रहेंगे, फिर जन्म लेंगे। तो हे परंतप इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अश्रद्धधाना जो श्रद्धा रहित हैं, जो नास्तिक हैं, नास्तिक हैं। देखो नास्तिक एक तो होता है कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको हम नास्तिक कहते हैं, मगर हम लोग के वेद के अंदर ऐसा कहा गया है कि जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। हमारे हिसाब से बौद्ध धर्म जो है वो नास्तिक है, क्यों, वो वेद को नहीं मानता है। जैन धर्म भी, वो भी नास्तिक है, क्योंकि वो वेद को नहीं मानता है, नास्तिक है। तो जो श्रद्धा रहित हैं या नास्तिक हैं, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, वे अपने स्वभाव अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। तो क्या जान पाते हैं, बोल उनकी रुचि भोग में है, संसार में है, वो संसार में घूमते रहते हैं। अगर आपकी रुचि आत्मा में नहीं है तो इसका मतलब आपकी रुचि अनात्मा में है, सीधा सीधा बात है। अनात्मा क्या है, भोग वस्तु है, भोग में आपकी रुचि है। तो ऐसे लोग संसार में घूमते रहते हैं। भगवान ने आगे कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब वेद के अंदर श्रद्धा है, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है, जिसकी गुरु में श्रद्धा है, उसको मिल जाएगा ज्ञान। अगर श्रद्धा नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा जो है वो सर्वप्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप श्रद्धा है। श्रद्धा होगी तब तो आप आओगे सत्संग में, श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे आओगे, नहीं आओगे आप। आधुनिक लोग कहते हैं कि ये तो गीता 5000 साल पहले लिखी गई थी, पता नहीं आउटडेटेड हो गई है, अब इसमें जो लिखा है इससे कोई काम नहीं होगा। तो लोगों की श्रद्धा नहीं है। अगर अपनी आंख पर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपको जो वस्तु नजर आएगी वो ठीक से नजर नहीं आएगी, आंख पर ही श्रद्धा नहीं हो, पता नहीं हमने देखा कि नहीं देखा। कई बार हम लोग का श्रद्धा नहीं रहती है ना, हम लोग कई बार बाहर जाते हैं। अभी कल की बात बताते हैं, हम लोग जो है विनय जी के साथ में कहीं जाना था, तो विनय जी आए, दरवाजा हमने बंद कर दिया, तो जैसे ही गाड़ी मुड़ी फिर हमको विस्मरण हो गया, पता नहीं हमने किया कि नहीं किया। फिर से हमने कहा विनय जी एक मिनट रुकिए, हम फिर से देख लें, एक बार फिर जाके उसको दरवाजा खोलना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी अपनी मन बुद्धि की अपनी स्मरण शक्ति पर श्रद्धा नहीं रही, हमने खुद किया मगर एक सेकंड के अंदर में बोलते नहीं भूल गए। तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा माने क्या, अपने मन को खुला रखना है कि अगर मैं शास्त्र और गुरु के कथन के हिसाब से अपनी साधना शुरू कर दूं तो मेरे को जो है वो प्राप्ति हो जाएगी। शंकराचार्य जी कहते हैं अश्रद्धाना श्रद्धा विरहिता, जिसकी श्रद्धा नहीं है, किसके बारे में, आत्मज्ञानस्य, आत्मज्ञान के बारे में श्रद्धा नहीं है। अच्छा, धर्मस्य स्वरूपे तत्फले नास्तिका, उसके स्वरूप और उसका जो हमको फल मिलेगा उसके अंदर नास्तिक भाव है, पता नहीं, विश्वास नहीं है, नास्तिका। पापकारी ने वो पाप करते रहते हैं। असुरा नाम उपनिषदन, वो असुर उपनिषद को फॉलो करते हैं। उपनिषद होता है एक असुर उपनिषद है। वो क्या है, देह मात्र आत्मदर्शनम एव, उनके लिए देह जो है वो आत्मा है। देखो एक बार विरोचन और इंद्र ये दोनों गए ब्रह्मा जी के पास में आत्मज्ञान के लिए, तो कुछ दिन साधना के बाद में जो है ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग जाओ नदी में या अपने वो तालाब के अंदर जाके देखो, और आपको जो दिखाई पड़े, जो दिखाई पड़े जिससे आप देख रहे हो वो आत्मा है, जिससे आप देख रहे हो वो आत्मा है। अब दोनों ही इंद्र और विरोचन दोनों ही अपना प्रतिबिंब जो है जल में देखा। विरोचन ने सोचा कि यहाँ गुरु ने तो यही कहा है जिससे देख रहे हो तो आँख से देख रहे हैं, आँख से हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, इसलिए आँख क्या है, आत्मा है। आँख कहाँ पर है, शरीर में है, इसलिए शरीर क्या हुआ, आत्मा हो गया। ये असुर उपनिषद है। और वो चला गया वापस, बोला मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे को ज्ञान हो गया, मैं वापस जाता हूँ। इंद्र जो है वो बोला कि नहीं मेरे को ज्ञान नहीं है, ठीक समझ में नहीं आया, गुरु ने हमारे कहा था कि ये शरीर आत्मा नहीं है, तो वो रह गए, उन्होंने ज्ञान बाद में प्राप्त किया वहां पर। तो ये असुर ज्ञान है, क्या असुर ज्ञान है, देह आत्मा है, देह आत्मा है, ये असुर ज्ञान है। और ऐसे लोग कहां से तृप्ति पाते हैं, भोग से तृप्ति पाते हैं, भोग करते जाओ तृप्त हो जाओ, भोग किया तृप्त कर लिया, बस यही उनका चलता रहता है। माम अप्राप्य है, मुझे ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। ईश्वर का शुद्ध रूप क्या है, ब्रह्मन। आप गीता में जहां जहां भगवान कहेंगे वसुदेव मेरे पास नहीं पाते हैं आप आते, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर भी जो तत्व है, एसेंस जो है वो क्या है, ब्रह्मन है, ब्रह्मन है। तो ब्रह्मन को प्राप्त नहीं होते। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, सदा संसार में ही घूमते रहते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। देखो इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, मगर वो प्रज्ञा चक्षु है। प्रज्ञा चक्षु किसको कहते हैं मालूम है, इसकी आंख नहीं है, उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। और वो एक कमरे के अंदर में है, और उस कमरे के अंदर चार दीवारी हैं, चारों तरफ दीवार है और एक गेट है। तो अपनी जो है छड़ी लेके अपना चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है कि कैसे द्वार से निकले, और जैसे ही वो द्वार आता है तो उसको कहीं खुजली हो जाती है देह में, तो रुक जाता है। तो रुक गया तो उसके बाद में जब खुजली उजली हो गई फिर चलना शुरू कर दिया, अब वो दरवाजा छूट गया उसका। तो ये खुजली जो है ये अश्रद्धा है। महात्मा लोग ऐसे ऐसे उदाहरण निकालते हैं कि आप एक बंद कमरे में हो, प्रज्ञा चक्षु हो, आपकी आंख नहीं है, आपके हाथ में एक लाठी है, आप दरवाजा खोज रहे हो, ठक 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 करके घूम के आए, दरवाजा यहाँ था, जैसे दरवाजा तक पहुँचे आपको खुजली हो गई, आप खुजलाने लगे और उसके बाद में फिर लाठी ठक ठक ठक, दरवाजा निकल गया, दरवाजा आपका निकल गया। तो हमें मुक्ति का साधन शास्त्र से प्राप्त हो सकता है, मगर शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा। देखो शास्त्र इतना विस्तृत है कि आप खुद अगर चाहो कि पढ़ लें वेद को, नहीं होगा, नहीं होगा। उपनिषद खुद पढ़ के समझ लें, नहीं होगा। गीता खुद पढ़ के समझ लें, नहीं होगा। जब तक कोई नहीं बता दे कि यहाँ पर ये मतलब है, इसको ऐसे समझना है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। मिस्टिक लैंग्वेज है, मिस्टिक लैंग्वेज। जब तक कोई बता नहीं दे तब तक जो है आप नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर क्या आप कर रहे हैं, यहाँ पर जो है अन्यस्य निंदा अन्यस्य स्तुति, निंदा कर रहे हैं कि आप अगर ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो आपका क्या हाल होगा। इसका मतलब ज्ञान की स्तुति हो रही है। निंदा कर रहे हैं कि अगर आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे, ये बताने का मतलब है कि ज्ञान की स्तुति है ये, ज्ञान प्राप्त कर लो और जन्म मरण के चक्र से निकल जाओ। अब जो है भगवान अपने बारे में बताएंगे, प्रभाव सहित भगवान ने सर्वव्यापी स्वरूप का कथन किया। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। चौथा श्लोक,
मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः।
मया मतलब मुझ में, ततम पता ना, परिपूर्ण है। इदम सर्वम जगत, ये सारा जगत जो है मेरे से परिपूर्ण है। कैसे परिपूर्ण है? अव्यक्त मूर्तिना, निराकार परमात्मा से ये पूरा का पूरा व्याप्त है। मस्तानी सर्वभूतानी, मेरे अंतर्गत सारे भूत हैं। जो कुछ भी आपको भूत नजर आ रहे हैं, चर अचर जो भी है, वो कहाँ है? मेरे में है। नच अहम तेसु अवस्थित है, मगर मैं उनमें नहीं हूं। भगवान कहते हैं कि ये सारा का सारा जगत मेरे में है, मगर मैं जगत में नहीं हूं, ये कहने का उनका मतलब है। इदम जगत सर्वम मया ततम अव्यक्त मूर्तिना, जो भी हम इदम इदम कह के कहते हैं ना, दिस, जो कुछ भी हम कहते हैं कि इदम, इदम का मतलब ये टेबल है इदम है, ये चेयर इदम है, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों, सब इदम है। चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे ब्रह्मा से लेके पिपीलिका तक हो, जो कुछ भी हो, जो भी ग्रहण योग्य है, वो सब का सब जो है विषय रूप है। मगर भगवान कहते हैं मैं इन सब में व्याप्त हूं। तो इदम क्या है? सारा का सारा जड़ है। इदम सारा का सारा जड़ है, और ये जड़ पदार्थ विकारी है, विनाशी है। मगर इसमें जो व्याप्त है वो कौन है? वो चेतन है। जो व्याप्त है वो चेतन है, और वो कैसा है? वो असीम है, वो अविकारी है। जगत विकारी है, मगर जो व्याप्त कर रहा है वो अविकारी है। जगत लिमिटेड है, सीमित है, मगर जो उसको व्याप्त कर रहा है वो असीम है। तो जगत क्या हुआ? जगत कहाँ से कहाँ तक है? तो जगत वृत्ति से लेकर ब्रह्मांड तक। हम लोग सोचते हैं ना, जगत कहाँ है? हमारे शरीर के बाहर वाली चीजें सारी जगत हैं, ऐसा हम सोचते हैं। मगर हमारा शास्त्र कहता है कि जो कुछ भी दिखाई पड़े वो जगत है। हमारी वृत्तियाँ हमको दिखाई पड़ती हैं, अभी क्रोध की वृत्ति आ गई, अभी लोभ की वृत्ति आ गई, तो ये वृत्ति से लेके ब्रह्मांड तक ये सारा का सारा जगत है। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछे जगत क्या है, तो आप ऐसा नहीं कहना मेरे को छोड़ के शरीर के बाहर की चीज़ें सब जगत है, ऐसा नहीं है। जगत हुआ आपकी वृत्ति से लेकर शुरू होकर ब्रह्मांड तक जो है ये जगत कहलाता है। अच्छा, तो अर्जुन सोच रहा था भगवान तो ब्लफ कर रहे हैं, हमारे सामने खड़े हैं, हमारी उम्र के हैं, हमारे जैसा ही इनका कद है, हमारे जैसा ही इनका शरीर है, ये कैसे सब जगह व्याप्त हैं? बोलते हैं व्याप्त हूँ मैं, माया मेरे, मैं व्याप्त हूँ, ऐसा कह रहे हैं सामने, अर्जुन के सामने। मगर तुरंत भगवान ने कह दिया अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति ना, मेरे को देख नहीं पाओगे, मैं अव्यक्त हूँ। अभी जो तुम देख पा रहे हो वो मेरा व्यक्त है, मगर जगत को मैं कैसे व्याप्त करता हूँ? अव्यक्त मूर्ति ना, मुझको देख नहीं पाओगे। अच्छा देखो, अगर हम रुई लेके उसका धागा बनाएं, धागा बना के उसके बाद कपड़ा बनाएं, तो कपड़े के अंदर आपको जो है धागा भी नजर आएगा, रुई भी नजर आता है ना, दोनों ही नजर आता है। मगर ब्रह्मन जो है, भगवान जो है, उस तरह से नजर नहीं आते जगत के अंदर, हम खुली आंख से देख नहीं पाते हैं। खुली आंख से कपड़ा देखने से हमको जो है वो धागा भी नजर आएगा और धागे के अंदर जो है रुई भी नजर आएगी, मगर जगत जगत को हम जब देखते हैं तो हमको क्या ऐसे ब्राह्मण दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। तो उस तरीके से नहीं है। भगवान ने आठवें अध्याय में बताया था, परह तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन। हमने प्रकृति के दो भाग देखे थे, एक तो व्यक्त है और दूसरा अव्यक्त होता है। प्रकृति दो किस्म की, व्यक्त अव्यक्त। और इस प्रकृति के परे वो जो तत्व है वो भी अव्यक्त है, वो भी अव्यक्त है। तो भगवान कहते हैं मैं तो प्रकृति से भी परे हूं, मैं तो अव्यक्त हूं। और वो अव्यक्त कैसा है? मन और इंद्रिय गोचर नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, वहां से वाणी जो है वापस आ जाती है। आपको अगर अपरोक्ष ज्ञान हो जाए फिर आपसे कोई पूछे भाई आप बताओ तो ब्रह्मांड के बारे में, आप नहीं बता पाओगे, कुछ नहीं कहोगे। ऐसा हाल हो जाता है कि अगर किसी गुंगे को आप रसगुल्ला खिला दो और उसको बोलो आप रसगुल्ले के बारे में वर्णन करो, वो नहीं वर्णन कर पाएगा, गुंगा है क्या वर्णन करेगा, स्वाद ले लिया उसने, आप उसको बोले एक्सप्रेस करो, नहीं कर पाएगा। आपको अनुभूति होगी, अनुभूति के बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप वर्णन कीजिए आपने क्या देखा, नहीं वर्णन कर पाएंगे। ये तो बातों निवर्तन वाणी वापस आ जाती है, आपके पास शब्द ही नहीं है उसके बारे में। अप्राप्य मनसा सा, अप्राप्य मनसा सा, वो आपका मन का विषय कभी नहीं बनता, मन का विषय नहीं बनेगा। आप जैसे टेबल चेयर देख रहे हो वैसे वो कभी आत्मा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, मन का विषय नहीं बनता। न चक्षु पश्यति रूपस्य, चक्षु जो है आंखें उसका रूप नहीं देख सकती, उसका फॉर्मलेस है, वो तो निराकार है, निराकार है, तो कैसे होगा? तो भगवान जो है सच्चिदानंद के रूप में सारे जगत में व्याप्त हैं। हमने ईशावास्य उपनिषद में देखा था ना कैसे भगवान व्याप्त हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब इजनेस, इजनेस इजनेस सबके साथ लगा हुआ है। ये इजनेस दिखानी पड़ता है, चेयर इज, टेबल इज, स्क्रीन इज, बिल्डिंग इज, रूफ इज, स्टार जितने भी हैं सब कुछ, सब में इजनेस लगा हुआ है, सब कुछ दिखाई पड़ता है मगर इजनेस नहीं दिखाई पड़ता है। वही इजनेस जो है वो अव्यक्त रूप से भगवान सब जगह व्याप्त हैं, उस इजनेस के कारण वो सब एग्जिस्ट करते हैं। अगर उसमें से एग्जिस्टेंस निकाल लिया जाए सब कोलैप्स कर जाएंगे, खत्म। इसलिए भगवान कहते हैं मैं वहां पर इस तरह से हूं। तो व्याप्ति क्या है? मत्सानी सर्वभूतानी, मत्सानी सर्वभूतानी ये व्याप्ति है। मई तिष्ठति इति मत्सानी, चर अचर जड़ चेतन स्थावर जंगम ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत सारे भूत मेरे में स्थित हैं। ब्रह्मा से लेके पिपीलिका तक जितने भी भूत हैं, जो कुछ भी आप दिख रहा है आपको, वो सारे के सारे जो है उसके अंदर भगवान के अंदर स्थित हैं। तो यहाँ व्याप्ति जो है कैसी है, कपड़े के अंदर जो रंग अगर कर दिया कि एक सफेद कपड़ा लेके आपने उसको लाल कर दिया, अब क्या हुआ, लाल रंग जो है सारे कपड़े को व्याप्त कर लिया, कहेंगे ना रंग कैसा है, लाल रंग ने व्याप्त कर लिया। तो क्या इस किस्म की व्याप्ति है क्या भगवान की? नहीं, ऐसी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि वहां पर तो रंग दिखाई पड़ता है, भगवान तो दिखाई पड़ते नहीं है। तो किस किस्म की व्याप्ति है, क्या कहना चाहते हैं भगवान? भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं सारे जगत का आधार हूं, ये व्याप्ति है। मैं सारे जगत का आधार हूं, ये व्याप्ति है। न चाहम तेसु अवस्थित, मैं सिर्फ आधार हूं, मैं उनमें नहीं हूं, मैं सिर्फ आधार हूं, मैं उनमें नहीं हूं। भगवान जो है अविनाशी हैं, और उस अविनाशी भगवान में जितनी भी वस्तुएं हैं जो भी हैं उसके अंदर, वो सारी की सारी विनाशी हैं, विकारी हैं, वो चेंज हो रही हैं। अगर भगवान ये कहें कि मैं उसमें भी हूं, तब तो भगवान क्या हो जाएंगे, विकारी हो जाएंगे, विनाशी बन जाएंगे। तो उस परम तत्व में, उस ब्रह्मन में, उसके आधार में सब कुछ उसके ऊपर में है, मगर ब्रह्मन उसमें नहीं है, ब्रह्मन उसमें नहीं है। ये ऊपर में जो चीजें दिखाई पड़ रही है सब विनाश वाली हैं, मगर ब्रह्मन या भगवान विनाशशील नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं कि न च हम तेषु अवस्थित, मैं उनमें नहीं हूँ। इसको हम एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ सकते हैं। हम लोग का पुराना एग्जाम्पल रज्जू और सर्प, रज्जू होगा तो सर्प दिखाई पड़ेगा, रस्सी होगी तो अब आपको सर्प दिखाई पड़ेगा, अगर रस्सी नहीं है आप कभी सर्प नहीं देखोगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं घटेगा। उसी तरह ब्रह्मन है तो जगत दिखाई पड़ता है, अगर ब्रह्मन नहीं होता तो जगत आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो रस्सी पर सर्प है, रस्सी पर सर्प है, मगर सर्प में रस्सी नहीं है। देखो पकड़ो इसको, रस्सी के ऊपर में सर्प है मगर सर्प में रस्सी नहीं है। सर्प की मिथ्यता जब हमको प्रताप जान पड़ जाएगी तो रस्सी रह जाएगा, रस्सी रह जाएगी, सर्प चला जाएगा। उसी तरह से ब्रह्मन है तो जगत उसमें है मगर जगत में ब्रह्मन नहीं है। जैसे सर्प में रस्सी नहीं है उसी तरह से जगत में भी वो नहीं है। अच्छा, जगत का मतलब केवल मेरा नाम रूप से है, केवल नाम रूप से है, यानी अगर हम उसको आपको सही सहज तरीके से अगर बताना चाहें तो हम ऐसा कहेंगे, अध्यस्त के विकार और विनाश आधार को प्रभावित नहीं करते। अध्यस्त, अध्यस्त मतलब सुपर इम्पोज, जो भी सुपर इम्पोज है रस्सी के ऊपर जो सर्प है, वो सर्प का विष जो है वो रस्सी को प्रभावित नहीं करता। उसी तरीके से सारा जगत जो है वो ब्रह्मन के ऊपर में अध्यस्त है, सुपर इम्पोज्ड है, इसलिए जगत में जो कुछ हो जाए वो ब्रह्मन को प्रभावित नहीं करेगा, आधार को प्रभावित नहीं करेगा। जगत का जो है उत्पत्ति स्थिति विनाश है, जगत का उत्पत्ति स्थिति विनाश है, मगर ब्रह्मन का, उसके आधार का, उसकी न उत्पत्ति है और न ही उसका विनाश है, उसका कोई विनाश भी नहीं है। मगर हम जो अगर रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई अगर पड़ता है तो उसके अंदर हम उसकी लाल आंखें भी देख लेंगे, उस पर स्ट्राइप भी देख लेंगे, सब कुछ दिखाई पड़ेगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा, मगर सब का सब मिथ्या है। अच्छा, अब ये तो कहा, अब भगवान जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं अगले श्लोक में, पांचवें श्लोक में।
न च मत्स्थानि भूतानि,
न च मत्स्थानि भूतानि,
पश्य मे योगमैश्वरम्,
पश्य मे योगमैश्वरम्,
भूतभृन्न च भूतस्थः,
भूतभृन्न च भूतस्थः,
ममात्मा भूतभावनः,
ममात्मा भूतभावनः,
न च मत्स्थानि भूतानि, पश्य मे योगमैश्वरम्, भूतभृन्न च भूतस्थः, ममात्मा भूतभावनः।
न च मत्स्थानि भूतानि, ये जितने भी भूत हैं मेरे में नहीं है। अच्छा, पश्य मे योगमैश्वरम्, मेरी योग शक्ति या ईश्वरी योग शक्ति को अर्जुन तुम देखो, मेरी माया को देखो, तुम मेरी शक्ति को देखो। क्या देखें भगवान? भूत वृत्त न च भूतस्थ, मम आत्मा भूत भावना है, भूत के उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, भूत वृत्त भूत का धारण और पोषण करने वाला मैं हूँ, न च भूतस्थ मम आत्मा, मगर मैं भूतों में नहीं हूँ, मैं भूतों में नहीं हूँ। अच्छा, श्लोक चार में कहा मत्स्थानी सर्वभूतानी, अभी देखा ना आपने श्लोक चार में, देखिए लिखा ना तृतीय पाद मत्स्थानी सर्वभूतानी, और यहां लिख दिया न च मत्स्थानी भूतानी, एक न लगा दिया, है ना विरोध? क्या भगवान कहते हो आप एक एक मिनट में रंग बदल देते हो? अभी कह रहे थे सब मेरे भूत, सारे भूत मेरे में है, आप कहते हो नहीं है, मेरे में कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी साधारण व्यक्ति इन दोनों श्लोकों को एक साथ अगर पढ़ लेगा ना, तो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। बोले कहते कौन सा सही है, ये सही है कि वो सही है, चौथा श्लोक सही है कि पांचवा सही है, बताओ। ये तो विरोध कर रहे हैं भगवान, मस्तानी सर्वभूतानी, कह दिया सारे भूत मेरे में है, पांचवे श्लोक पर कह दिया नचमत्स्थानी भूतानी, मेरे में कुछ भी नहीं है। पश्चिम योगम ऐश्वरम, मेरी माया योग का ऐश्वर्य देखो, मेरी शक्ति देखो क्या है। अच्छा, अब देखो भगवान ने तीन स्टेटमेंट दिए हैं, आप जरा ध्यान से सुनना इसको, आप समझ पाओगे जरूर। एक स्टेटमेंट भगवान ने एक सेंटेंस कहा, एक वाक्य कहा, मत्स्थानी सर्वभूतानी, चौथे में कहा न च हम तेसु अवस्थित है, ये भी उसमें भगवान ने कहा चौथे में ना, मैं उनमें नहीं हूं। न च हम तेसु अवस्थित है, अब कहते हैं न च मत्स्थानी भूतानी, ये भूत मेरे में नहीं है। अब आप रज्जू सर्प का एग्जाम्पल ले लो तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक जो है रस्सी है, रस्सी के ऊपर में एक सांप है, सुपर इम्पोज है सांप, तो मस्तानी सर्वभूतानी, तो सर्प जो है रस्सी पर है, रस्सी क्या है भगवान है ब्रह्मन है, सर्प क्या है जगत है, तब आप क्या कहोगे बताओ, सर्प कहाँ है रस्सी पर है, इसलिए मत्स्थानी सर्वभूतानी न च हम तेसु अवस्थित है, मगर रस्सी सर्प में नहीं है। रस्सी और सर्प जो है अलग अलग है, रस्सी जो है सर्प में नहीं है, सर्प आएगा जाएगा रस्सी रह जाएगी। आपको ज्ञान हो गया आप सर्प निकल चला गया, आप टॉर्च लाइट लेके आए, टॉर्च लाइट जलाया तो आपको नजर में आया अरे ये तो रस्सी है, फिर सर्प आपको नजर आएगा कभी नजर नहीं आएगा। अगर रस्सी सर्प में होती तो रस्सी भी गायब हो जाती, मगर ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। फिर भगवान ने कहा ये देखो, ये दोनों जो पहली दो बातें बताई ना, मस्तानी सर्वभूतानी न च हम तेसु अवस्थित, ये व्यवहारिक चीजें के बारे में, ये व्यवहारिक दृष्टि से हम ऐसा कहते हैं, हमको जगत भी नजर आ रहा है आधार नजर नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं कि मैं आधार रूप में हूं और उस आधार के ऊपर में ये सर्प रूपी सारा विश्व नजर आ रहा है। न च हम तेसु अवस्थित है, मैं उसमें नहीं हूं, मैं जगत में नहीं हूं, जैसे रस्सी सर्प में नहीं है उसी तरह से भगवान या ब्रह्मन जो है इस जगत के अंदर नहीं है। ये व्यवहारिक दृष्टि से न च मस्तानी भूतानी, ये स्टेटमेंट नंबर थ्री है, ये परमार्थिक दृष्टि से है। परमार्थिक दृष्टि, रज्जू से पूछो आपने सर्प बनाया क्या, बोला कौन सा सर्प, मेरे को तो सर्प नजर ही नहीं आता है, आपको नजर आ रहा है क्या? ब्राह्मण से पूछो आपने जगत बनाया, बोले ना मैंने तो नहीं बनाया, आपको नजर आ रहा है, आपका प्रॉब्लम है, मैंने नहीं बनाया है, हम देखेंगे सचमुच हमारा प्रॉब्लम है, वो भगवान का नहीं है। तो फाइनल स्टेटमेंट में क्या हुआ कि सर्प नहीं है, परमार्थिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो सर्प नहीं है, केवल ब्रह्मन ही ब्रह्मन और कुछ है ही नहीं है। उसी तरह से ब्राह्मण को छोड़कर जगत में और कुछ नहीं है, हर आभूषण के अंदर केवल सोना ही है, केवल नाम रूप उसका दूसरा है और हमने नाम दूसरे दे दिए, ऐसे ही हुआ ना। तो हर आभूषण को अगर आप आभूषण छुओगे तो क्या उसको नहीं छू रहे हो, ब्राह्मण गोल्ड को नहीं छू रहे हो, सोने को छू रहे हो, आप चाहे पायजेब को छू लो, चाहे अंगूठी को छू लो, चाहे आप नेकलेस को छू लो, जो भी छू लोगे वो सोना छू रहे हो, आप सोना को छू रहे हो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, बोले ब्रह्मन ही ब्रह्मन है सारा और कुछ नहीं है, बाकी जो है नाम रूप, बोले तो बाचारम्भन है और कुछ नहीं है, नाम रूप तो है नहीं, नाम रूप तो मिथ्या है। आप मेरे को ये बताओ, अगर हम एक अंगूठी आपको दें और उसमें से हम सोना निकाल लें, तो आप अंगूठी का नाम रूप हमको दिखा पाओगे? सोना सत्य है, मगर उसके अंदर जो नाम रूप है वो जो है वो मिथ्या है। ये जितने भी आप नाम रूप देख रहे हो ना संसार में, वो ब्रह्मन के ऊपर में सारे नाम रूप हैं। अगर ब्रह्मन को हम निकाल लें नाम रूप से, नाम रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे सोने के आभूषण से अगर सोने को निकाल लें तो आभूषण का नाम रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। आप दिखा पाओगे? अगर हम हार में से अगर सोना निकाल लें तो आप हार दिखा पाओगे हमें? नहीं दिखा पाओगे आप। अच्छा, मगर मेरे को तो नजर आता है, मेरे को तो जगत नजर आता है। तो शास्त्र यहां कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं कि आपका जैसा आंख का चश्मा है उसके हिसाब आपको नजर आता है। आपने लाल चश्मा पहना है तो लाल नजर आएगा, काला पहना है तो सारा जगत काला नजर आएगा, पीला पहना है तो पीला नजर आएगा। बोले चश्मा उतार के देखो, आपका मन अगर उद्विग्न है तो आपको सारा जो है संसार एजिटेटेड लगेगा। मन आपका जो है अगर प्रसन्न है तो आपको प्रसन्न लगेगा, सब कुछ ही अच्छा लगेगा। ये हमारा अनुभव है, अनुभव। तो जगत क्या है? जगत जो है ये मन की कल्पना है। जब तक मन है तब तक जगत है, जब मन सो जाता है जगत खत्म हो जाता है। आप जब सुसुप्ति में जाते हैं उस टाइम में मन लय हो जाता है। जब मन लय हो जाता है तब आपको जगत नजर नहीं आता। आपको सुसुप्ति में नजर आता है जगत, और जब जाग जाते हैं सारा जगत जगत नजर आता है। तो जगत कहाँ है? मन में है। मन जब जागा हुआ है तो जगत है, मन अगर सोया हुआ है तो जगत खत्म हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं न च मस्तानी भूतानी, मेरे में तो है ही नहीं भूत, कुछ नहीं है, कोई भूत वगैरह नहीं है। तो अगर जगत हमें दिखाई पड़ता है तो वो सर्प की तरह है, बस दैट्स ऑल। जैसे सर्प हमको दिखाई पड़ रहा है एक भ्रम है, मन की कल्पना है, उसी तरह से ये सारा का सारा जगत जो नाम रूप है वो मन की कल्पना है। मन जब तक जीवित है, जब तक जागा हुआ है, तब तक आपको जगत नजर आता है। मन जहाँ सो गया जगत भी खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो पहले दो वाक्य मस्तानी सर्वभूतानी न च हम तेषु अवस्थित व्यावहारिक दृष्टि है, और न च मस्तानी भूतानी ये परमार्थिक दृष्टि है। परमार्थ की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, केवल ब्रह्मन छोड़ के और कुछ भी नहीं है। जब हम व्यवहारिक सत्ता को मानते हैं तब परमार्थिक सत्ता उससे प्रभावित नहीं होती है। व्यवहारिक में मानते हैं कि जगत है, मगर उस जगत से ब्रह्मन जो है या भगवान प्रभावित नहीं होते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। हम लोग को अपना एक्सपीरियंस है, हम लोग जो सुखी दुखी होते हैं मन के अंदर होता है, वृत्ति रूप में आता है, मगर उसका जो प्रकाशक है, वृत्ति का प्रकाशक जो है उससे प्रभावित नहीं होता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। हम लोगों ने पंचदशी का नाटक दीप प्रकरण देखा था कि कहीं नाटक हो रहा है स्टेज के ऊपर, पर वहाँ एक दीपक है, तो दीपक जब नाच हो रहा है उसको भी प्रकाशित करता है खुशी का टाइम है, और कोई विलाप हो रहा है वो भी वो प्रकाशित करता है, या कुछ भी नहीं हो रहा है उसको भी प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित करने का मतलब क्या हुआ? जो लैंप जो है वो जब नाच होता है तो क्या नाचने लगता है लैंप? या जब अगर दुख का सीन होता है तो क्या वो लैंप रोने लगता है? नहीं होता ना। उसी तरह से जो प्रकाशक जो है, जो आत्मा जो है, वो हमारे मन की वृत्तियों का प्रकाशक है, और वृत्ति के रूप में हमको सुख और दुख होता है। जितने भी सुख दुख हैं वो वृत्ति रूप में आते हैं। आपने एक दुर्घटना देखी, एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट तो बाहर हुआ, दुख कहाँ हो रहा है आपको? भीतर हो रहा है। आपने केवल देखा है खून, किसी की चोट लगी उसका खून देखा है, बाहर है वो तो, मगर वृत्ति अंदर आई खून की, दुख अंदर हो रहा है तो वृत्ति रूप है। तो वृत्ति रूप जो है उससे वृत्तियों से उसका वृत्ति का जो प्रकाशक है वो कभी प्रभावित नहीं होता। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी माया की लीला देखो, इस माया ने सब कुछ बनाया है, ये सब का सब जो है माया ने मेरे ऊपर अध्यस्त किया है। और ये माया कैसी है, अघटित घटना पटी ऐसी, जो घटना घटी नहीं है वो दिखा देती है, जो घटना घटी नहीं है इतनी पावरफुल ये माया है कि वो घटना घटी नहीं है मगर दिखा देती कि अरे ये तो घट गया। ये सारा का सारा जो है ये इल्यूसरी है, ये भ्रांति है। और माया की कार तो हम जानते ही हैं, या मा, या मीन्स संस्कृत में, मा मीन्स नो, या मीन्स जो नहीं है वो माया है। तो माया से जो कुछ भी बना है वो है नहीं। तो वेदांत पढ़ के हमको करना क्या है, वेदांत पढ़ के हमको ये करना है कि अध्यस्त के बारे में जानना है कि ये विकारी और विनाशी है और ये सुपर इम्पोज है, इसको हमको निगेट करना है। मगर आधार को हमको जानना है। आधार में कौन है, भगवान है, ब्रह्मन है। उस ब्रह्मन को अगर हम जान लें जिसका जन्म मृत्यु वही बन जाऊंगा। मगर अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, तादात्म्य करते हैं किसके साथ में, शरीर के साथ में, तो जन्म मृत्यु वाले बन गए हम। तो मुक्ति क्या है, बोले बहुत सरल चीज है, अनात्मा से तादात्म्य करोगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहोगे। अनात्मा मतलब शरीर भी अनात्मा है, शरीर से अगर तादात्म्य करेंगे तो हम जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे। और शरीर से तादात्म्य छोड़कर अगर आत्मा से तादात्म्य करेंगे तो हम जो है मुक्ति पा जाएंगे हमारा, और जन्म मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि आत्मा या ब्रह्मन की तो मृत्यु होती नहीं है, आत्मा या ब्रह्मन की मृत्यु होती नहीं है। भूत वृत्त न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना, भूत भावना, भावन माने सृष्टि करना, मैं सब भूतों की सृष्टि करता हूं, मैं उत्पत्ति कारण हूं। भगवान देखो, भगवान कहते हैं मैं भूत भावन, मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न का कारण हूं, मैं नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। हमने आगे भी कई बार देखा है कि ब्रह्मन बिना माया के रह सकता है, माया बिना ब्रह्मन के नहीं रह सकती। भगवान है तो उत्पत्ति हो सकती है। भगवान कहते हैं मैं उत्पत्ति कारण हूं। भूत वृत्त, मैं सबका पालन पोषण करता हूं इसलिए मैं स्थिति कारण हूं। सबकी स्थिति का कारण कौन है, भगवान है। तो उत्पत्ति का कारण भी भगवान है, स्थिति का कारण भी भगवान है। मगर मम आत्मा न भूतस्थ, भगवान कहते हैं मम आत्मा न भूतस्थ, मैं भूतों में वर्तमान नहीं हूं। उत्पत्ति स्थिति विनाश जो है केवल अध्यस्थ का है, मेरे में नहीं है। उत्पत्ति स्थिति विनाश जो है, जो चीजें अध्यस्त हैं, जो चीजें माया ने बनाई हैं, जो चीजें पंच महाभूत की बनी हुई हैं, केवल उनमें है, मुझ में नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है, मम आत्मा, मम स्वरूप, मम स्वरूप है, मैं उससे प्रभावित नहीं होता। सृष्टि कार्य से जो है सृष्टिकर्ता प्रभावित नहीं होता है। सृष्टि कार्य जगत अगर बदल रहा है, विनाश हो रहा है, तो उसका आधार विनाश नहीं होता, आधार वैसे रहता है, आधार इजनेस चलता रहता है। जैसे आप देखो ना, एक अगर वृक्ष है, वृक्ष है, आपने काट दिया वृक्ष को, तो वृक्ष तो खत्म हो गया। अब उसके पत्ते होते आपने हटा दिया, उसके बाद में उसको आपने एक लॉक बना दिया, सब उसकी ब्रांचेज अंजर काट के, तो वृक्ष तो गया, अब क्या हो गया, वो लॉग हो गया। इलेक्ट्रिक पोल आप देखते हो ना सड़क के ऊपर में, वो सब जो है क्या है, वो वृक्ष ही तो है। उसको अब उसको वृक्ष नहीं कहते वो लोग, अब उसका नाम हो गया पोल। तो वृक्ष का है पना कहां चला आया, वो पोल में आ गया, पोल में आ गया है पना। अब आपने पोल को काट के उसके प्लैंक बना दिए, पोल खत्म हो गया, प्लैंक आ गए, तो हैपना नष्ट नहीं हुआ, हैपना ट्रांसफर होता जा रहा है। उस प्लैंक से आपने फर्नीचर बना दिया, अब प्लैंक खत्म हो गए, अब फर्नीचर है आ गया, फर्नीचर को आपने जला दिया, तो हैपना नष्ट नहीं हुआ, अब राख है, अब उसको हम क्या कहेंगे, राख है, तो है पना जो है ट्रांसफर होता रहता है पना का नाश नहीं होता है। किसका नाश होता है, जो भी उस है पने के ऊपर अध्यस्त जो चीज थी, वृक्ष, उसके बाद लॉग हुआ, प्लैंक हुआ, फर्नीचर हुआ, राख हुई, ये सब जो है सारे के सारे उसके ऊपर अध्यस्त हैं, उनका जो है विकार होता है, विनाश होता है पने का कभी भी विनाश नहीं होता। माया का काम क्या है, मिथ्या को सत्य दिखाती है, यही माया का काम है, हमको झूठ मूठ में फंसा दिया जगत के अंदर में, असुर उपनिषद के अंदर फंसा दिया, ये देह आत्मा है, लो हम उसी में फंसे, हम सब फंसे हुए हैं, देह आत्मा है। अब हम जो है 64 किस्म की क्रीम जो है लगाते रहते हैं, रात की क्रीम, दिन की क्रीम, धूप की क्रीम, छाया की क्रीम, समुद्र में नहाने की क्रीम, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि किसी ने उनको बताया है कि लेडीज ब्यूटी पार्लर के अंदर 64 किस्म की क्रीम यूटिलाइज करते हैं लोग, दे हैव 64 वैरायटीज। तो मैंने तो अपने गुरु से सुना है, मैं भी आपको वही कहता हूँ, मैंने कभी लेडीज पार्लर में जाकर देखा नहीं है, आप लोग को अनुभव अच्छा होगा, आप बता सकते हैं कितने किस्म की क्रीम होती है। किसके लिए कर रहे हैं, अनात्मा के लिए कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, इसको देह को आत्मा मान के बैठे हुए हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं, ये देह जो है आत्मा है। मगर हमने आगे भी पढ़ा है कि गुना गुने सुबर्तनते, पढ़ा है ना गुना गुने सुबर्तनते, इस पंच महाभूत से मेरा शरीर बना, पंच महाभूत से विषय बने, ये पंच महाभूत पंच विषयों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रकृति प्रकृति के साथ खेल रही है, माया माया के साथ खेल रही है, त्रिगुण त्रिगुण के साथ खेल रहे हैं, यही तो हो रहा है, और तो कुछ हो नहीं रहा है। गुना गुने सुबर्तनते, और उसी में हम फंसे हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं। भगवान कहते हैं ये सब की सब मेरी माया है। अब इसके बाद भगवान जो है आकाश का दृष्टांत देंगे और फिर बताएंगे कि आकाश की तरह मैं सर्वव्यापी हूं और असंग भी हूं। भगवान दिखाएंगे मैं कैसे प्रभावित नहीं होता हूं, ये तो बताना होगा ना भगवान को, जितनी भी अध्यस्त चीजें हैं उनमें विकार हो रहा है, मैं अगर मैं ठीक हूं, मेरे में कोई विकार नहीं होता है। अब एक एग्जाम्पल देके बताएंगे कैसे जो है मैं जो है जो आधार है उसमें कोई विकार नहीं होता, ये भगवान प्रूव करेंगे एक एग्जाम्पल से, तो वो एग्जाम्पल हम अगले दिन देखेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः, हरि ओम।